उसकी बात पर फरीद खान खुलकर हंस पड़े। डाइनिंग रूम में हल्कापन फैल गया, मगर रेहाना बेगम ने सादिया की तरफ एक नज़र डाली। न मुस्कान, न नाराज़गी, बस एक ऐसी नज़र जो बहुत कुछ कह गई। खाना चलता रहा, हंसी भी। अरमान एक एक नज़र रेहान पर डालता हुआ और एक नज़र सादिया पर वहां चेयर खींचकर बैठ गया था खाना खाने के लिए। मैं जुबेदा से बात करती हूँ, ज़रूर उसने कोई ना कोई लड़की इसके लिए देख रखी होगी, रेहाना बेगम ने कहा। वो अरमान की माँ की बात कर रही थी। नहीं, अम्मी से कोई बात नहीं करेगा, अरमान तुरंत बोला, वरना वो मेरी शादी भी किसी खानदान की लड़की से तय कर देंगी और मुझे खानदान में शादी नहीं करनी है। क्यों, खानदान में शादियाँ इतनी बुरी भी नहीं होती, सादिया ने कहा। हमारी शादी भी तो खानदान में ही हुई है, ये कहते हुए उन्होंने अपने शौहर रेहान की तरफ देखा। आप लोग तो एक ही घर में रहते थे, अरमान ने कहा। तो ताया अब्बुली तुम लोगों का निकाह पढ़ा दिया, उन्हें लगा मेरी यतीम भतीजी हैं, वे कहाँ जाएंगी। उनकी बात पर रेहान हंस पड़ा। देखिए मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, उसने रेहान से शिकायत की। ठीक ही तो कह रहा है, रेहान ने कहा। रेहान की बात पर अरमान खिलखिलाकर हंस पड़ा। रेहाना बेगम भी मुस्कुरा उठी। मुझे अपनी बेटी बहुत प्यारी है, फरीद खान मुस्कुराते हुए बोले। दुनिया कुछ भी कहे, सबसे ज्यादा प्यार मैं तुम्ही से करता हूँ, सब लोग तुमसे जलते हैं बेटा। वहाँ हंसी खुशी का माहौल हो गया। फरीद खाने की मेज से उठने लगे थे, उनका खाना हो चुका था। सही बात है, सादिया ने भी कहा। जलने वालों की शक्ल ऐसी होती है क्या, अरमान ने हंसकर पूछा। और नहीं तो क्या, सादिया बोली। अगर तुम मेरी प्यारी कजिन ना होती तो बताता मैं कैसी होती, अरमान ने कहा। उसकी सी बात पर सब हंस पड़े। रेहाना बेगम भी मुस्कुरा रही थी। तभी अरमान का फोन बजा, वो खड़ा हो गया। सॉरी मैं जा रहा हूँ, खाना तो खाकर जाओ, सादिया ने कहा। नहीं, कहकर वो चला गया। ये लड़का अपनी बहन के इशारों पर चलता है, उसी का फोन होगा, रेहाना बेगम कहने लगी। अरमान के घर की लॉन साइड की लाइट खराब हो गई थी, माहिरा वहीं बैठी हुई थी। अरमान उसके पास आ गया। तुमने इतना टाइम लगा दिया, माहिरा ने कहा। साथ ही वो लाइट ठीक कर रहे लड़के की तरफ एक नज़र डालती है। अरमान बताने लगता है कि अंदर क्या बातें हुई, क्या कहा गया। ये सुनकर माहिरा को गुस्सा आ गया। तभी जो नौजवान लाइट ठीक कर रहा था वो बोला, हो गई, तुम फैजान अपनी बहन से कहना, माहिरा ने कहा। मेरा भाई तुम लोगों की तरह यतीम नहीं है, मैं खुद देख लूंगी उसकी शादी कब और कहाँ करनी है, मुझे उसके सुझाव की जरूरत नहीं है। माहिरा, अरमान ने उसे टोका, ऐसे क्यों बात कर रही हो, तुम्हारा शौहर है। ठीक है, फैजान हल्का सा मुस्कुराया, कल मिलूंगा तो कह दूंगा। वो लाइट ठीक करते वक्त गिरा हुआ सामान इकट्ठा करने लगा। मेरा मतलब ये नहीं था, अरमान ने अपनी बहन को टोका, तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए था, सादिया दिल की अच्छी है। किसने देखा है कि दिल के अंदर क्या है, माहिरा बोली। मॉम तो कहती थी कि इसका दिल बहुत अच्छा है, उसका इशारा फैजान की तरफ था। लेकिन क्या मैं किसी को अपना शौहर कहकर किसी से मिलवा सकती हूँ, फैजान ने सामान अपने टूल बॉक्स में डाला और उसकी तरफ देखा। पर्सनैलिटी है इसमें, धीरे बोलो। तभी जुबेदा बेगम बाहर आई। तुम्हारे डैड घर के अंदर है, सुन लेंगे, गलत फैसले लेते वक्त किसी की नहीं सुनी उन्होंने, माहिरा बोली। अभी उन्हें सुनाई दे जाएगा, इस बात को छोड़ो, जुबेदा बेगम ने कहा। मैंने अरमान के लिए लड़की देख ली है। कौन सी लड़की, माहिरा ने पूछा। जुबेदा बेगम ने कहा, जिसकी पहले भी बात हुई थी, रिश्तेदारी खानदान में शादी नहीं होगी, माहिरा गुस्से से कहती हुई वहां से चली गई। अब अगर उसे पसंद नहीं है, अरमान बोला, तो मैं क्या कर सकता हूँ। माहिरा की वजह से ये दूसरी लड़की है, जुबेदा बेगम ने कहा, जिसे तुम बिना मिले ही रिजेक्ट कर रहे हो। वो मेरी बड़ी बहन है, अरमान ने कहा। मेरे लिए अच्छा ही सोचेगी, कहाँ से आएगी वो लड़की, उसकी अम्मी ने कहा, जो माहिरा को अच्छी लगे। अब कमरे में रेहान और सादिया दोनों अकेले थे। सादिया रेहान के लिए कॉफी लेकर आई, वो लैपटॉप पर काम कर रहा था। सादिया उसके पास बैठ गई। मैं आपसे एक बात पूछूं, सादिया ने धीरे से कहा। हाँ कहो, रेहान ने स्क्रीन से नजर हटाए बिना जवाब दिया। सादिया ने उसकी तरफ देखा। क्या आपने सचमुच ताया अब्बू के कहने पर मुझसे शादी की है, रेहान ने उसकी तरफ देखा। हाँ, उसने कहा। अगर वो नहीं होते तो क्या ये शादी नहीं होती, सादिया ने पूछा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना सीधा जवाब देगा। रेहान हल्का सा हंसा। तुम मुझे बचपन से जानती हो, मेरी मर्जी के बिना मुझसे कोई काम नहीं करवा सकता। अगर मैं नहीं चाहता तो दादा भी मुझे शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे। उसकी बात पर सादिया मुस्कुरा दी, लेकिन रेहान का चेहरा गंभीर हो गया। देखो, उसने साफ कहा, मुझे सफाई देना पसंद नहीं है, और ना ही एक ही बात बार बार दोहराना, मुझे ये सवाल दूसरी बार नहीं चाहिए, समझी। ठीक है, सादिया ने कहा। फिर वो बोली, मगर आपने अरमान के सामने इस तरह बात क्यों की, मुझे बुरा लगा। हमें किसी के सामने कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, रेहान ने कहा। सादिया चुप हो गई, वो सच में सोच में डूब गई थी। देखो सादिया, रेहान ने थोड़ी नरमी से कहा, सच है कि डैड चाहते थे तुम उनके पास रहो, तुम उनके मरहूम भाई की निशानी हो, लेकिन मुझे तुम पसंद थी। उसने एक पल रुककर कहा, हमारा रिश्ता माहिरा और फैजान जैसा नहीं है, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। उसकी बात पर सादिया मुस्कुरा दी। मैं बहुत खुश हूँ, उसने बस इतना कहा। आर्यन किसी सोच में डूबा हुआ था। सानवी जाय को सुलाकर कमरे में आई। उसने देखा कि आर्यन बेहद परेशान लग रहा था। मैं आपको कल से देख रही हूँ, सानवी ने कहा। क्या हुआ, क्या तुम मेरी बात मानोगी, आर्यन ने उससे पूछा। वो जानता था कि सानवी कितनी जिद्दी है, अगर मानने लायक होगी तो जरूर मानूंगी, सानवी ने साफ कहा। आर्यन ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, देखो, अगर तुम जय को लेकर कुछ दिनों के लिए कहीं चली जाओ तो जहां से जाना होगा ज्यादा समय नहीं लगेगा। आर्यन जानता था वो करेगी तो अपनी मर्जी से ही करेगी। मैं क्यों जाऊं? सानवी तुरंत बोली। और किस लिए? तुम्हें पता है मेरा कितना काम है? रेस्टोरेंट है, मैं वहां शेफ हूं। ऐसे कैसे चली जाऊं? ये आसान नहीं है। इतना कहते ही उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर कृति का नाम चमक रहा था। ठीक है, मैं बाद में आपसे बात करती हूँ, कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। असल में आर्यन को विक्रांत के खिलाफ सारे सबूत मिल चुके थे। सुबह वो पुलिस को सब कुछ देने वाला था। उसे पता था पुलिस विक्रांत को पकड़ने जाएगी, और विक्रांत ऐसा आदमी नहीं है जो कोई जवाबी कार्रवाई ना करे। सबसे बड़ी चिंता सानवी और जय थे। वे दोनों उसकी जिंदगी के सबसे करीबी और प्यारे लोग थे, लेकिन सानवी उतनी ही जिद्दी भी थी। अगर वो उसे पूरी बात बताता तो शायद वो माने ही नहीं। अब आर्यन यही सोच रहा था कि वो सानवी को कैसे समझाए, कैसे मनाए। जय के आने के बाद से ही आर्यन ने कमरे में एक काउच लगवा दिया था, वही काउच जहां सानवी सो सकती थी। कमरा बंद होते ही सानवी थकान से टूट चुकी थी। वो बिना ज्यादा कुछ सोचे काउच पर लेट गई, और कुछ ही देर में उसकी सांसें गहरी और बराबर हो गई। आर्यन बेड पर था, लेकिन उसकी आंखों से नींद को सुनीर थी। कमरे की हल्की सी पीली रोशनी, सातवी की सोती हुई आकृति और बीच में पसरा हुआ सन्नाटा, सब कुछ उसे और बेचैन कर रहा था। वो छत को घूर रहा था, लेकिन असल में देख कहीं और रहा था। पहले जिन लोगों की फिक्र उसे सबसे ज्यादा सताती थी, वे लोग जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, अब उसकी चिंता कहीं और अटक गई थी। सानवी और जय। आर्यन की छाती में एक अजीब सा दर्द उठा। अगर कुछ भी गलत हुआ, अगर विक्रांत ने जरा सी भी जवाबी चाल चली, उसकी उंगलियां अपने आप मुट्ठी में बदल गईं, और फिर उसकी नजर सानवी पर टिक गई। उसे सानवी को मानना था। प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं। मुझे फॉलो करना और रिव्यू देना याद रखें। उम्मीद करती हूँ मेरी ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी।